उसमें जो लोग कहते हैं ये कौन है साबिरीन, अब देखें उसकी क्या निशानी हमें पता चले, सबर करने वाले कौन है, कैसा उनको उनका सबर कहाँ से नजर आएगा हमें। अल्लादीना इजाज साबत हम मुसीबत, उन ये वो लोग हैं कि जब उनको मुसीबत पहुंचती है, मैंने आपको क्या बताया साबा क्या होता है, यानी तीर का बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पे लगना। तो जो मुसीबत भी होती है ना, ऐसे नहीं कि वो आ किसी और के घर पे रही थी तो वो गलती से मेरे घर पे लैंड हो गई, ऐसे नहीं होता। वो इसी को पहुंचनी थी, इसी वक्त में पहुंचनी थी, ऐसे ही होना था, वो उसको वैसे ही हुआ, ऐसे बाय चांस नहीं हो जाता, अचानक नहीं हो जाता। तो ये लोग हैं कि जब इनको पहुंचती है कोई पहुंचने वाली यानी मुसीबत कोई तकलीफ, कालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आगे से क्या कहते हैं, हम तो अल्लाह ही के हैं, हमारा मालिक अल्लाह है, हम अपने मालिक खुद थोड़ी हैं, हम अल्लाह के हैं। जैसे आपका है ना मसलन, आप कहें ये गाड़ी मेरी है, तो अब आप जो गाड़ी को मर्जी करें, चाहे उसको साफ करें ना करें, चाहे उसको रखें ना रखें, चाहे उसको तोड़ें फेंकें, जो मर्जी करें, कहते मेरी गाड़ी है, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप कहते हैं कोई मैं इसकी मिल्कियत रखती। हमारा मालिक कौन है, हम अपने खुद मालिक हैं या अल्लाह ताला हमारा मालिक है? जब हमारा मालिक, हमने मान लिया कि अल्लाह हमारा मालिक है, वो जात है जो मेरी मिल्कियत रखती है, तो फिर वो जो मर्जी करे, ये मुश्किल आए या कोई और मुश्किल आए, मेरा अपना आप तो मेरा है ही नहीं, कुछ आपका है अपना बताएं? अगर आपका कुछ अपना होता तो जरूर उसको कब्र में लेकर जाते, छोड़ के ना जाते, लेकिन देख लें कब्र में इंसान कुछ भी नहीं लेकर जाता, अपनी रूह तक अपनी नहीं, अपना जिस्म भी साथ छोड़ जाता है, जब भी तो मौत आती है ना। आप कहते हैं दिल चले वो चलता ही नहीं, आप कहते हैं सांस चले वो चलती ही नहीं, वो भी तो आपका नहीं है, कुछ भी नहीं हमारा, ना हमारा ये जेवर ना कपड़े ना घर ना गाड़ी, कुछ भी हमारा नहीं है, तो हमारा तो अपना आप भी हमारा नहीं है, फिर किसका है? अल्लाह ताला का। मैं और जो चीज भी मेरे पास है सब अल्लाह ताला की, चाहे वो मेरी औलाद है, चाहे शौहर है, चाहे घर बार है, कोई भी चीज जो मेरे पास है वो सभी अल्लाह की है। यहां तक आपने कन्फेशन कर लिया, इतराफ कर लिया, इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह ही के हैं, वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसी की तरफ पलट के जाना है। यानी आप कोई चीज का भी नुकसान हो गया ना, तो वो तो चीज का नुकसान, वो मेरे से चली गई तो मैंने भी तो यहां पे नहीं बैठे रहना, किसी की वफात हो गई है तो वो गया है ना, वो भी अल्लाह का था, मैं भी अल्लाह की, वो चला गया तो मैंने भी चले जाना है, हम सबने चले जाए, इन्ना बेशक हम इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ पलटने वाले। ये ना सिर्फ ऐसा कलमा है कि जिससे इंसान को अजर मिलता है इसको कहने से, बल्कि इससे दिल में तसल्ली भी आती है, इससे दिल ठहर जाता है। ये जो लोग अल्लाह ताला के हाँ बशारतें पा रहे हैं ना, खुशखबरियां पा रहे हैं, खुशखबरी हो सब्र करने वालों को, इज्जतें पा रहे हैं, मकाम पा रहे हैं, रिवॉर्ड्स हैं जिनके लिए, ये वो लोग हैं जो हर तंगी में हर मुसीबत में इन्ना लिल्ला पढ़ा करते थे और इससे अपने दिल को तसल्ली देते थे। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर ये फरमाता है कि ये हैं जो जिनके साथ अल्लाह ताला की मदद होती है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे खामिद अबू सलमा एक रोज मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होके आए और खुशी खुशी फरमाने लगे, आज तो मैंने एक ऐसी हदीस सुनी है कि मैं बहुत ही खुश हुआ। इससे पता चलता है कि वो घर आके शेयर भी करते थे। तो क्या जिस किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे और वो कहे अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लफ ली खैरम मिन, एक तो ये भी इसका वो एराब है कि इस तरह से वख लुफ ली खैरम मिन भी इसका एराब कई जगह पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, और अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन, हाँ ये भी आपको मिलेगा कि ए अल्लाह मुझे जो मुसीबत आई है इसमें मुझे अजर दे और इससे बेहतर बदला मुझे अता फरमा। तो फरमाया अल्लाह ताला उसको अजर और बदला जरूर देता है जो ये अल्फाज कहता है। तो कहती हैं उम्मे सलमा मैंने ये दुआ याद कर ली। जब अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के फिर मैंने ये वाली दुआ मांगी। लेकिन मेरे दिल में क्या बात थी कि अबू सलमा जैसा इंसान तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता, कौन मिल सकता है, इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब मेरी इद्दत गुजर चुकी तो एक रोज मैं खाल को दिबागत कर रही थी यानी उसको रंग रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अंदर आने की इजाजत चाहिए। मैंने हाथ धो डाले, आपने आके निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की मेरे साथ। तो फिर आगे तो लंबा वाकया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको प्रपोज किया और ये हमारी माँ बनी उम्महातुल मोमिनीन में से हजरत उम्मे सलमा। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी मुसलमान को कोई रंज कोई मुसीबत पहुंचे उस पे चाहे ज्यादा वक्त भी गुजर जाए फिर उसको याद आ जाए और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले तो मुसीबत के सबर के वक्त जो अजर मिला था वो ही अब मिल जाएगा। इसी तरह इब्ने माजा में अबू सिनान फरमाते हैं कि मैंने अपने एक बच्चे को दफन किया भी मैं उसकी कब्र में से निकला नहीं था कि अबू तलहा खौलानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला और कहा सुनो मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना सुनाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मलक मौत से पूछता है कि तूने मेरे बंदे की आंखों की ठंडक और इसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया तो उसने क्या कहा, यानी उसका बेटा उसकी औलाद छीन ली तो उसने क्या कहा। फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछता है तो वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला उसने तेरी तारीफ की और इन्ना लिल्लाह पढ़ा था। अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसके ऊपर क्या लिख दो, बैतुल हम्द, हम्द का घर, कि इसने इस वक्त में भी अल्लाह ताला की तारीफ की है। तो इन्ना लिल्लाह इतना स्ट्रोंग कलिमा है कि इसको याद कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो चिराग भी गुल हुआ, चिराग भी बंद हो गया तो आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा कि किसी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मुश्किल के वक्त भी इंसान क्या पढ़े इन्ना लिल्लाह, कहीं जरा सी भी तकलीफ आती एक कांटा भी चुभता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, आपके बच्चे ने बर्तन तोड़ दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, किसी के आपको पता चला किसी के कोई मुसीबत में है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। लेकिन कभी कभी होता है कि लोगों को समझ नहीं होती इस चीज की। आप अब कोई आपको आगे कहता है मेरी अम्मी बीमार है बहुत सख्त बीमार है अस्पताल में एडमिट हो गई, आप कहते हैं ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते नहीं, ये तो हुआ वह सही बाकी आपको बताती, आगे से वो कहती नहीं, वो फौत नहीं हुई, क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ फौत होने का कलमा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फौत होने का तो है ही, लेकिन कोई किसी किस्म का बीमारी है कोई परेशानी है किसी का घर टूट गया, आपको पता चलता है कि उसका घर टूट गया इन्ना लिल्लाह, आपको पता चला कहीं झगड़ा हो गया इन्ना लिल्लाह, आपको पता चला कोई बीमार पड़ गया सख्त इन्ना लिल्लाह ही बना, आपको पता चला किसी की जॉब चली गई इन्ना लिल्लाह ही बना ले राज। तो ये सारे मौके हैं जो कोई भी मौका ऐसा हो उस पे इन्ना लिल्लाह पढ़ना, इवन आपके घर की लाइट चली जाए इन्ना लिल्लाह, आप किसी के घर गए वो घर पे ही नहीं मिला और आपको एक तकलीफ उठानी पड़ी ना, आप सारा वो चल के आए वो घर पे ही नहीं था, आपने कहा इन्ना लिल्लाह। आप किसी दफ्तर में गए अपना कोई काम कराने के लिए आगे से वो काम ही नहीं हुआ तो आप कहते हैं इन्ना लिल्लाह, बजाय आप गालियां देने के और ऐसे फजूल कलिमात करने के, गाड़ी किसी के साथ टक्कर हो गई इन्ना लिल्लाह, वो किसी किस्म का भी नुकसान किसी किस्म की भी तकलीफ किसी किस्म की भी आपको स्लाइटेस्ट कोई नागवारी गुजरी हो कोई मुश्किल पेश आ जाए तो ये कलमा ना भूले। जो ये पढ़ता है उसको क्या मिलेगा उसको क्या फायदा होगा, उलाए का अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है, उसकी रहमतें होती हैं। ये इतना बड़ा कलिमा है, यानी अगर इंसान ये समझ जाता है ना, समझ के जो पढ़ता है, ये मेरी तकदीर में ऐसे ही लिखा था और मेरे से ये चीज चली गई, तो मैं तो खुद ही अल्लाह का हूं, ये चीज भी अल्लाह की थी। और जिसकी मिल्कियत होती है, देखें आप उसको कह तो नहीं सकते तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों मेरे से ली, वो क्यों ली। जैसे सर तुम सुलेम का बेटे की जब वफात हुई थी, तो हामिद जब घर आए तो उनको आते ही ये नहीं कह दिया, हाय हाय बेटा तो जो बेचारा बीमार था वो तो फौत ही हो गया। हामिद आया, उन्होंने पूछा कि बेटी की कैसी तबीयत है, बीमार था ना जब वो गए थे सफर पे। कहती है पहले से बेहतर है, नहीं पहले से बेहतर जगह पे है ना, पहले तो तकलीफ में था। और फिर पूछती हैं सुबह को कि बताओ अगर आपके पास कोई अमानत रखे और वो वापस लेने के लिए आ जाए अपनी अमानत, तो आप क्या करोगे। मैंने कहा भाई वापस उसको दे देंगे, उसमें कौन सी ऐसी बात है। अरे जिसकी चीज है अगर वो लेने आ जाता है तो आप थोड़ी कहेंगे मैंने नहीं देनी। तो कहने लगी फिर तुम्हारा बेटा अल्लाह की अमानत था और उसने वापस ले लिया। देखें ये बात है कि इंसान जब वाकई उसके दिल में ये होता है ना कि मैं भी और मेरी हर चीज भी, इसकी मालिक मैं नहीं हूं इन चीजों की, अल्लाह है। हम बोलते तो हैं लेकिन हम मालिक अपने आप को खुद ही समझते हैं। तो ठीक है, चीज के जाने का रंज है, गम है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए इब्राहिम तेरी जुदाई मैं बहुत गमगीन कर रही है और दिल रो रहा है, आंखें आंसू बहाती हैं, लेकिन जुबान से वो ही निकलेगा जिससे अल्लाह ताला राजी होता। फिर इंसान जुबान से नहीं कुछ ऐसे कलिमात निकालता, क्यों जानता है ना मेरे रब ने ले ली, उसकी अमानत थी। अल्लाह अकबर, ये फिर वो लोग हैं जिनके दर्जात इतने हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अपनी रहमतें अपनी मेहरबानियां अपनी नवाजिशें इन पे करता है। सलावात के साथ आला आ जाए ना, आला, ये देखिए यहाँ पे आला जैसे आया, तो फिर माना क्या है कि अलैहिम उन पर, नहीं सलावात के आगे अगर आता आला तो फिर था, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए ये आ जाए कि अल्लाह ताला ने सलावात करनी, इंसानों के लिए आए तो फिर तो ये है कि जैसे है, हम क्या आगे पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सलावात भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो फरिश्ते क्या है दुआ मांगते हैं, दुआए रहमत मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए जब सलावात का लफ्ज आता है तो अल्लाह ताला रहमतें नाजिल करता है, तो अल्लाह ताला की रहमत में आ जाते हैं वो, अल्लाह ताला की इनायत में आ जाते हैं। तो आगे तो फिर से रहमत का लफ्ज आ रहा है, वा रहमतुन, ये आ रहा है ना, तो यहां पे फिर क्यों सलावात आया। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इस पे जोर देने के लिए कि अल्लाह ताला अपनी इनायतें उसके ऊपर निछावर करता है और अपनी रहमतों में उसको ले लेता है, अपनी मेहरबानियां उसको देता है। अब देखें रहमत बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की रहमत किसी को मिल जाए तो जी ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक है नेमत और एक है रहमत, ये बात को समझे, एक है नेमत और एक है रहमत। अल्लाह ताला की नेमत ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला जब चाहे दे और जब चाहे वापस छीन ले, मगर अल्लाह की रहमत वो चीज है कि जब अल्लाह ताला एक दफा दे देता है तो फिर वापस नहीं लेता अपनी रहमत को। अल्लाह अकबर, तो ये लोग हैं जिनके ऊपर कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला की रहमतें निछावर होती हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमतों की चादर में इनको समेट लेता है, और अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, वसी से इसका नाम अर रहमान और अर रहीम है। ये सारी सब्र करने वालों की बातें आ रही हैं, और बशीर साबिरीन से आप आगे पढ़ें, ये सारी उनके लिए, वो साबरीन का पता कैसे चलेगा, वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, सर पढ़ते नहीं है, वो इसको समझते हैं, इसके ऊपर ईमान रखते हैं, इनको यकीन है। और यही लोग हैं, यही साबरीन वो लोग हैं जिन पे रहमतें भी नाजिल होती हैं। पहले क्या कुछ खबरी आई थी, अल्लाह ताला इनके साथ है, अल्लाह की मदद यानी इनके साथ, अल्लाह ताला का हाथ इन पे है। तो और दूसरी अब क्या आ रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनायतें, बख्शिशें और रहमतें इन पे, और वो उलाइका हुमुल मुहतदून, ये वो लोग हैं जिनको डिक्लेयर कर दिया अल्लाह ताला ने कि ये हैं जो हिदायत पाने वाले, हिदायत याफ्ता। हम सब चाहते हैं हम हिदायत याफ्ता लोगों में हो जाएं, जो ऐसे वक्त में अल्लाह को याद रखे, उसकी रजा में राजी रहे, और फिर भी ये समझे कि ये मेरे ऊपर मुसीबत आई है तो क्या हुआ, मैं तो अल्लाह ताला का ही हूं और हर चीज अल्लाह की है, और हम सबको उसकी तरफ लौटना है, ये है हिदायत याफ्ता। और उलाई का आया वो लोग हैं, देखें वो कामयाब होने वाले लोग हैं, हिदायत याफ्ता लोग हैं। ऐसे लगता है कि उनके दर्जे इतने बुलंद हैं कि वो दिखाया जा रहा है, वो देखो ऊपर, जो वो ऊपर दर्जों वाले वो हैं। अल्लाह अकबर, लम जाला मिन होम। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम इम्तिहानों में सबर कर का मुजाहिरा करें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। इसके बाद सबर की एक आला मिसाल, उसका जिक्र आएगा, जिक्र मुभम है लेकिन आप समझ जाए। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह ताला के शायर में से है। शायर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, अलामत निशानी जिससे शऊर हासिल हो जाए, ये बात समझ आ जाए कि ये किस किस की है। तो हर कौम के या हर मजहब के कुछ शायर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सलीब किसका शायर है, क्रिश्चियंस का। अच्छा, इसी तरह झंडा किसका शायर होता है, किसी मुल्क का, कपड़े का टुकड़ा ही होता है ना, लेकिन वो उसका शायर होता है। आप उसकी अगर बेहुर्मती करती हैं तो वो डायरेक्ट कहीं जला रहे हैं किसी का झंडा, तो इसको उनकी तौहीन समझा जाता है। इसी तरह आप देखें मुल्क का कौमी तराना जो होता है, वो भी उनका शायर होता है, हालांकि क्या एक नज़म ही है ना, लेकिन जब उसका कौमी तराना बन गया तो उनका शायर बन गया। इसी तरह रिलीजियस सिंबल्स जो हैं वो शायर अल्लाह हैं, अल्लाह के शायर हैं, अल्लाह ताला की निशानियां हैं, और ये यानी अल्लाह के दीन की निशानियां हैं, अल्लाह ताला के दीन के इम्तियाजी निशानात हैं जिनसे आप अल्लाह के दीन को पहचानते हैं। आगे भी है, सूरह मादा में भी आएगा, उसमें भी जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको शायर कहा गया। इसी तरह मस्जिदें अल्लाह के शायर हैं, इस तरह बैतुल्ला सही की जगह सफा मरवा जो है, इसी तरह आपका हिजाब आपका ये आपके दीन का शायर है ना, कि आप हिजाब वाले देख के पता चल जाता है ये मुसलमान है, कोई और तो नहीं बोलेता। इस तरह दाढ़ी है, मर्दों की ऐसी दाढ़ी जो सुन्नत के मुताबिक है, वो भी उनका शायर है। तो अजान आपका शायर है। तो इन चीज़ों का अगर मजाक उड़ाया जाए, इन चीज़ों की हकीर समझा जाए किसी के हिजाब का, किसी उसका, तो इसका मतलब आप शायरुल्लाह की बेहुर्मती कर रहे हैं। अल्लाह की निशानियां हैं ये, यानी उसके दीन की रिप्रेजेंटेशन है। आप ये एक लफ्ज लिख लेंगे ना, रिलीजियस सिंबल, शायरुल्लाह क्या है, रिलीजियस सिंबल्स, तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो रिलीजियस सिंबल है, ये किसको कहा गया रिलीजियस सिंबल, सफा और मरवा पहाड़ियों को, ये भी शायरुल्लाह में से है, क्योंकि इनका इनके तवाफ, जिसको यहाँ पे तवाफ कहा गया, सही मुराद है, इनकी सही की जाती है। अब ये कैसे शायरुल्लाह में से हैं, और क्योंकि इनकी बात आते ही, इनका नाम आते ही आपको क्या याद आ जाता है, हाजी उमरा याद आ जाता है ना। दूसरी बात ये कि यहाँ पे सफा मरवा की बात करने की क्या जरूरत है, ये तो अभी हम इम्तिहानों की बात कर रहे थे और सबर की इतनी बात, जो सबर वाले हैं उनके लिए ये। तो सबर की एक आला मिसाल है बीबी हाजरा, जिनका ताल्लुक सफा मरवा पहाड़ी से बहुत है। इतनी बड़ी वो मिसाल है सबर की कि अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कायम रखा है, जिंदा रखा है। और चूंकि वो दौड़ी थी अपने बच्चे की भूख प्यास मिटाने के लिए, सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान दौड़ी थी, अल्लाह ताला ने इस दौड़ लगाने को कयामत तक के लिए मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, एक औरत दौड़ी थी लेकिन मर्द भी इस पे दौड़े, मर्द भी इस जगह पे सही करें, इसके बगैर उनका ना हज मुकम्मल ना उमरा। वो अपनी बच्चे को लेकर यहां पर क्यों थी, ऐसी जगह जो बियाबान थी, जहां ना खाने को ना पीने को अल्लाह के हुक्म पर, इसलिए कि जब उनके शौहर उनको यहां पर छोड़कर जा रहे थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उनको ये कह दे कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, बस अब तुम यहीं पे रहोगे। खामोश थे, सवारी पे सवार हुए और पलट गए। बीबी हाजरा बेकरारी में भागी और जाके उनसे पूछा कि ये हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो वो आगे से खामोश है, परेशान हो गई कि ये क्या है। उनका दामन पकड़ के पूछा, किसके सहारे हमें छोड़े जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आगे से कुछ नहीं। आखिर खुद ही उनको ये बात समझ में आई कि इब्राहिम तो बगैर अल्लाह के इज़्ज़त के तो कुछ नहीं करते होते, तो बस खुद ही सवाल किया कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, तो सर हिला दिया हाँ में। उसी वक्त सबर, इतना सबर, उसी वक्त खामोश हो गई। फिर नहीं रोका इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, फिर आगे से क्या जवाब देती हैं, फिर अगर अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है तो फिर वो हमें कभी जाया नहीं करेगा। यानी कितना अल्लाह ताला पे भरोसा। ये एक देखिए, इंसान अपने ऊपर एक मुश्किल ले लेता है, अपने बच्चे के ऊपर ना, और वो छोटा बच्चा हो, उसकी तो तकलीफ देखी नहीं जाती, वहीं सारी सारी रात जागती हैं बच्चों के पीछे। और यहां क्या बच्चे को पास ना खाने को ना पीने को, एक थैली दे गए थे जिसमें खजूरें थी और पानी की एक छोटी सी मशकी सी, छोटा सा बैग बस, ना कोई बोरी थी खजूरों की ना कोई कुछ। अब जाहिर है वो चंद दिन में खत्म हो गई, अब क्या है यहाँ पे भूख और प्यास, बच्चा भिलकने लगा। अब ऐसे में वो सफा पे चढ़ती थी और वहां से बच्चे को देखती थी, बच्चा कहाँ पे पड़ा हुआ था, जहां पे आप देखें जहां पे इस वक्त इजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम है वहां पे बच्चा पड़ा हुआ था। अब वो सफा पे चढ़ रही है और वहां से बच्चे को देख रही, फिर नीचे आती है मरवा पे जाने के लिए कि मैं वहां से कोई देखूंगी कहीं पानी का निशान नजर आ जाए, जब नीचे आई तो बच्चा नजर नहीं आ रहा, इसलिए दौड़ती थी, इसलिए वो ग्रीन लाइट्स के दरमियान में आदमियों को कहा जाता है वो दौड़े। अब वो पहाड़ियां तो छोटी छोटी हो गई है ना लोगों के चढ़ने की वजह से बार बार, वरना ये बड़ी पहाड़ियां होती थी, तो इस जगह पे वो दौड़ती थी, फिर वो मरवा पे चढ़ती थी और फिर वहां से बच्चे को देखती थी, तसल्ली हो जाती थी अच्छा बच्चा ठीक है, फिर बेकरारों की आती थी। 7 दफा इस तरह से ऊपर नीचे गई हैं, चक्कर लगाए हैं, लेकिन देखें सुबहान अल्लाह वो गिव अप ही नहीं उन्होंने किया। एक दफा देख तो लिया था कि नहीं है पानी, तो क्या दोबारा चढ़ने से दोबारा कोई पानी आ तो नहीं जाना था ना, लेकिन सुबहान अल्लाह उनका ईमान कैसा था कि एक निगाह बच्चे पे और ये भरोसा है कि अल्लाह ताला कुछ रास्ता निकालेगा जरूर। फिर चढ़ रही है, फिर देख रही है, अल्लाह ताला को उनका यहां पे रहना, उनका ये भरोसा, उनकी ये सही इतनी पसंद आई है कि दौड़ा दिया है सबको इस जगह पर, तुम भी भागो। उनकी तो यही चीज थी ना भागना, उस चीज को जिंदा कर दिया अल्लाह ताला ने। और एक जगह पे आता है कि सुभान अल्लाह कितने अरसे बाद तो वो जुरहम कबीला फिर आया था ना वहां पे, जब पानी निकल गया अल्लाह ताला ने जमजम निकाल दिया, फिर परिंदे वगैरह देखे उन्होंने तो आए, लेकिन जब वो नहीं आए थे तो आता है कि ऐसा ऐसा भी वक्त होता था कि सैलाब आ जाता था और इर्द गिर्द सब जगह पानी है और ये बच्चे को लेके बस टीले के ऊपर बैठी है। सुभान अल्लाह मैं कहती हूँ, एक औरत होते हुए खुद सोचे, हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और कभी हस्बैंड कहीं बाहर चले जाएं तो हमें होता है परेशानी कि हाय अल्लाह मैं अकेली हूं और ऐसे, हालांकि दुनिया जहान के बीच में बैठे हैं और हर सहूलत भी है। ये नहीं, एक अकेली औरत एक बेबी के साथ, कोई पता नहीं है रात कैसी गुजरती होगी उनकी, दिन कैसा गुजरता होगा उनका, बोलने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह ताला फिर बड़ा कदरदानी करने वाला है, इसीलिए शाकिर होना नीम आया इस आयत के एंड, बड़ी कदरदानी करता है उसने, इनके कदमों के निशानों को भी जिंदा रखा कि जिधर ये दौड़ी है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत है, आपका सब्र, आपका ये जो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज भी बर्दाश्त करना होता है ना, कभी इसके ऊपर दिल छोटा ना किया करें। क्या है इतना ही मेरे ऊपर, क्या मुश्किल आ गई, हाय हाय, और हाय हाय ही नहीं खत्म हो रही। आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको वो फल लगाएगा, वो इनामात देगा, दुनिया में भी देगा जो कभी सोचे भी नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने इस मक्का को आबाद करा दिया इस औरत की कुर्बानी से। औरतें अपने आप को कभी बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सारा तो मर्द ही कर सकते हैं। उनको बाज मर्द भी ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि औरत तो बिल्कुल ही बेकार ही चीज़ है, एक वैसे ऐसी सिर्फ हमें सर्व करने के लिए बनाई गई, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन आप देखें सुबहान अल्लाह, जो पहली पहली पहला इंसान जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे वो हजरत खदीजा थी, पहली इस जमीन के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को पढ़ने वाली हजरत खदीजा थी, पहली शहीद इस्लाम की हजरत सुमैया थी, और इस मक्का शहर को आबाद करने वाली बीबी हाजरा थी। छोटी बात है ये कोई? हम मर्दों की बहादुरी की बातें तो सुनते हैं और औरतें सोचती हैं हमारे तो बहादुरी हो ही नहीं सकती। नहीं, इस जगह को आबाद करना, यहां पर तने तनहा रहना, एक घर में भी एक तने तनहा रहना मुश्किल होता है, और कहां बियाबान के अंदर, वहां पे तो कोई दरख्त भी नहीं था, कोई घर नहीं, कोई झोंपड़ी नहीं बना के गए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, झोंपड़ी तो चलो तो कोई साया तो करके जाऊं नीचे बैठ ही जाएंगे, कोई घर चार दीवारी बना जाऊं, कुछ भी नहीं, बस वहां पे बिठाया ये खजूर और ये पानी और खुद तो चले। तो अल्लाह ताला ने संभाला ना, फिर वो ही रब है, आज भी वो ही रब है जिसने बीबी हाजरा के लिए ये जमजम निकाल दिया, कोई रब आज भी तो है। हमारी इतनी तड़प है कि नहीं, हम कुछ करने वाले हैं या नहीं, हम कुर्बानी देना जानते हैं कि नहीं, हमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ बस आए मेरी तो सुनी ही नहीं जाती, मेरी तो ऐसे नहीं, मेरा तो सिर्फ ये मसला, मेरे ऊपर ये क्यों आ गया, ऐसी हालत क्यों आ गई, ये हालात क्यों हो गए। अल्लाह अकबर, आज तक जो लोग जा रहे हैं वहां पे, जो लोग उन कदमों पे दौड़ रहे हैं, सोचिए ये सारा अजर किसको जा रहा है, सारा लिखा किसके लिए जा रहा है, जितनी आबादी वहां पे होती लाखों लोग जाते हैं लाखों, लेकिन आबाद करने वाली कौन थी, क्या उनको ना अजर मिलता होगा। सुभान अल्लाह, तो दास्ताने तो बहुत हैं, अगर आप सोच के देखें, एक एक कहानी उठा के देखें और उनके सिर्फ ये पढ़ लेना आसान है, हाँ वो वहां पे थी फिर वो जमजम निकल गया, फिर जुर्हम कबीला आ गया, ये तो बोलने में तो 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन वहां पे एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, कभी सोचा आपने कैसे गुजारा होगा, तपती दोपहरें कैसी गुजारी होंगी, रात कैसी गुजारी होगी, रात कितनी खौफनाक हो जाती है। अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला ने इनको पहाड़ियों को निशानियां बना दिया, ये भी अल्लाह की पहचान कराने वाली हैं, उसकी याद कराती हैं ये पहाड़ियां, ये भी अल्लाह ताला के शायर में से हैं। फमन हज्जल बैता वैतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवाफ बिहिमा, जो हज के लिए जाए इस बैतुल्ला के हज के लिए या उमरे के लिए जाए, उस पे कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों का तवाफ करे। तो अब ऐसे लगता है कि शायद अगर ना करें तवाफ तो फिर कहा गया ना कि अगर इनका तवाफ करेंगे तो कोई गुनाह नहीं, तो इसका मतलब शायद ना करें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये क्यों कहा गया, इसका मतलब इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगी। ये इसलिए कहा गया कि जाहलियत के अंदर क्या था कि इन दोनों पहाड़ियों के ऊपर मुशरिकीन ने एक असाफ और नाइला, दो बुत थे, ये असल में दो लोग थे जिन्होंने बदकारी की थी काबा में, तो उसके बाद इनके बुत बना दिए थे कि लोग यहां से आए और इनको देखे और इबरत पकड़े कि देखो ये ऐसे बुरे लोग थे। तो बाद में लोगों का ये हाल हो गया, देखें जब जमाना गुजरता जाता है ना तो इस तरह होता है, ये काम होने लगते। तो पहले तो उन्होंने इसलिए रखे थे कि नफरत का इजहार करें लोग, लेकिन वक्त के साथ साथ चूंकि और भी बुत वहां पे थे तो ये भी बुत थे, तो लोगों ने तो इनकी भी पूजा शुरू कर दी, और बल्कि उल्टा उठा के इनको सफा और मरवा पे रख दिया। तो अब मुसलमानों को ये ख्याल होता था कि ये तो जाहिर है वो इन चीजों से जो मुशरिकीन करते थे ना, इनसे बहुत दूर भागते थे, कि ये इनकी मुशरिकाना चीजें थी कि ये यहाँ पे बुतों की वजह से ये सही करते थे तो हम नहीं करेंगे। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई कि नहीं, ये शायर अल्लाह में से हैं, इनकी वजह से नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने बीबी हाजरा की निशानी को जिंदा रखा हुआ, इसलिए आपके ऊपर कोई इसके अंदर हर्ज नहीं है कि आप इनका तवाफ करें। तो उर्वा ने आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा था कि इसका मतलब क्या है, क्या ये सही लाजिम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फरमाया गया कि फला जुनाह अलैह। तो उन्होंने फरमाया नहीं, अगर ये अल्फाज होते वला जुनाह अल्लाह यतवफ बिहिमा तो फिर था कि करो तो ठीक है, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी एक अंसार के बारे में भी एक रिवायत थी, मगर इतनी काफी है कि वो लोग जाहिलियत में इन चीजों को करते थे, तो मुसलमानों ने सोचा कि यहाँ पे अब हम ये काम ना करें क्योंकि ये लोग करते थे, तो उनको कहा गया कि नहीं आप इनका तवाफ करेंगे। तवाफ से मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि घूमना तो है ना, लेकिन ये मतलब नहीं कि सात चक्कर लगाने हैं, बल्कि एक साइड एक सही का एक वो हो गया नंबर, और दूसरी साइड पे गए सफा से मरवा, एक सही का एक चक्कर, मरवा से सफा दूसरा, तो गोल घूमना चक्कर नहीं है। फमन ततवा खैरन, तो जो कोई खुशी के साथ कोई नेकी करे, यानी इसका मतलब है कि ये काम भी खुशी से ही करना चाहिए, नेकी के किसी काम को भी आप मारे बांधे मुसीबतों के साथ ना करें। अल्लाह ताला को हमारी कोई किसी नेकी की कतन कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं उसको चाहिए हमसे, लेकिन कोई इंसान खुशी से करता है अल्लाह ताला उसको कबूल करता है, और जो कराहत से करे, बातें बना बना के करे, तो वो हम अपने लिए खुद नहीं पसंद करते कि हमारे बच्चे कोई हमारे ऊपर एहसान जिता जिता के कोई हमारा काम करें, या फिर बुड़बुड़ाते हुए करें, या फिर गुस्से में करें, हमें पसंद नहीं आता। मुझे बताएं कि अगर हम ऐसी नेकियां करें, हाय थक गए, हाय ये तो इतने मेरे तो पैर दुखने शुरू हो गए, सही तो इतनी मुश्किल है, और ऐसे, या कोई भी नेकी, हाय रोजे, इस दफा तो रोजे सुना है 14-14 घंटे के आ रहे हैं, बस पता नहीं दुनिया के कोई अनोखे ही रोजे आ गए, पिछले साल भी रखे होते, लेकिन हर साल रमजान शुरू होने से पहले ऐसी बातें, हाय बड़ी गर्मी के रोजे आ रहे हैं, हाय 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 हाय, क्यों हम खुशी से क्यों नहीं कोई नेकी कर सकते, क्यों हम परेशानी के साथ करते, कर भी लेंगे लेकिन फिर इतनी यानी मुश्किल के साथ उसको, और इतना दिल बुरा करके, और इतना जैसे सर से उतारने वाली, ऐसी ही हमारी नमाजों का हाल है। हाय नमाज का वक्त फिर हो गया, सर्दियों में तो एक कभी हम नमाज पढ़ते हैं दूसरी का टाइम हो जाता है, नहीं कितनी हमें परेशानी है कि दोबारा टाइम हो गया हमारी अल्लाह ताला से बात करने का, हाजिरी देने का। तो देखा जाए तो इसी तरह कुकुले बाद में है, किसी का हक अदा करना हो या किसी की हेल्प करनी हो तो घर में इतना बुड़बुड़ाती हैं लोग, मैं ही रह गई थी, किसी और को कह देते तो मेरे ऊपर मुसीबत पड़ गई, हाय हाय ये खाना किसी को बिना, खुद ही हम कह देते हैं कि हमने ये काम करना है, और खुद ही फिर बुड़बुड़ाते भी रहते। अब वो नेकी भी क्या, उस ऐसी नेकी क्या नेकी होगी जो हम इतनी बुरे दिल के साथ करें, तो नेकी वही होती है जो इंसान खुश दिली से करता है, उस पे अजर का सवाब की उम्मीद रख के करता है, सिला चाहता है अल्लाह ताला से। लेकिन चूंकि हम बस सर से उतारना चाहते हैं या किसी के आगे नंबर बनाना चाहते हैं, तो फिर वो शायद पता नहीं नंबर तो बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन फिर वो नेकी तो नहीं होती। वो वक्त था कि जिस वक्त देखे वो तपते मैदान में, और अच्छी बड़ी ऊंची पहाड़ियां थी उसके ऊपर चढ़ रही थी और आ रही थी, और क्या उन्होंने भी खाया होगा या क्या पिया होगा, कैसी भूखी प्यासी होंगी वो खुद, और किस तरह भाग रही थी। आज देखे उन फर्श पे एसी लगे में, हर तरफ भी एसी है, ठंडक है, आप बड़े कंफर्टेबली वहां पर यानी सही करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जुबान पे कितनी शिकायत होती है। तो अपनी नेकियों को खूबसूरत बना के अल्लाह ताला के पास भेजा करें। वो कहते हैं ना एक मुहावरा है कि दूध भी दिया तो मेंगनियों वाला, यानी दूध तो है लेकिन उसको भी खराब करके भेजा। तो कहीं ये ना हो कि नेकियां भी वो हों जो कि बददिली से की गई हो। इन्नल्लदीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो यक्तुमूना जो छुपाते हैं, किस चीज को, मा अनजलना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, उसको जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनात, बय्यिनात है वाज़े दलाइल, और हुदा क्या है, शरीयत, हिदायात, रहनुमाई। बय्यिनात में कुरान के अहकामात भी आ सकते हैं। मिन बादी मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, इसके बाद के हमने तो खोल खोल के बयान कर दिया वह लोगों के लिए किताब में। हम यानी क्या बात समझ आई कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में या अपनी जो अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबें अल्लाह ताला की तरफ से जो आई हैं तौरात या इंजील, उसमें अहकामात को, हिदायात को खोल खोल के वाजे तौर पे बता दिया है, किसके लिए, लिन्नास, लोगों के लिए। लेकिन फिर भी जो लोग उनको छुपा लेते हैं, ये किसकी तरफ इशारा है? पहला इशारा तो उलमाए यहूद की तरफ है, जिनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाजे निशानियां मौजूद थी, सारी निशानियां। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सूरह फतह के एंड में आता है जो आखिरी आयत है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में भी आता है, मसलहुम फित तौराती और मसलहुम फिल इंजील, इनकी मिसाल तौरात में भी और इंजील में भी ऐसे दी गई थी, इतनी वाजे निशानियां थी। तो और इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक था कि उनका नाम अहमद होगा, ये सूरह सफ में आता है। तो इसके बावजूद ये उलमा, क्योंकि लोगों को तो पढ़ने नहीं देते थे कि ये इतनी मुकद्दस किताबें हैं कि तुम तो पढ़ ही नहीं सकते और ना समझ सकते, हम ही तुम्हें समझाएंगे, लिहाजा वो इसको छुपाते थे। तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? उलाइक, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की भी लानत है। लानत करने वाले कौन है? सारी मखलूकात मुराद है, जिसमें फरिश्ते भी हैं और इंसान, मछलियां, खुश्की तरी के सारे जानवर। इतना बड़ा गुनाह है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से दीन की बात आ जाए और उसको छुपा लिया जाए, पता भी है फिर भी छुपा लिया जाए, ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे दीन का कोई मसला पूछा गया और फिर भी उसने छुपा लिया, इसके बावजूद कि उसको इल्म था उसका, मसलन आपसे कोई नमाज का पूछ लेता है कि भाई मिसाल के तौर पे नमाज की फजर की कितनी रकतें होती, आपको पता है? आप या तो बॉदर ही नहीं करते, या आपको बस मैं क्या अपने सर पे मुश्किल हूं, जाए जाके किसी और से पूछे, कोई मैं ही रह गई। तो यानी कोई दीन का मसला किसी से जब पूछा जाए, वो छुपा ले, इसके बावजूद कि उसको इल्म है, तो कयामत के दिन उसको आग की लगाम दी जाएगी। इतना सख्त गुनाह है ये। और इससे उलट, अगर दीन का इल्म लोगों तक पहुंचाते हैं, खैर और भलाई की बात लोगों तक पहुंचे, तो हदीस में है कि जो ये काम करता है कि खैर और भलाई की बात लोगों तक पहुंचाता है, और उसमें अव्वलीन तो दीन है ना, दीन की बात है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन और आसमान की सारी मखलूक उसके लिए दुआ करती है, हत्ता कि चींटियां अपने बिलों में उसके लिए दुआ करती हैं, समंदर की मछलियां तक उसके लिए दुआएं करती हैं। इतनी बड़ा मकाम है उसका, जो लोगों तक अल्लाह की बात को पहुंचाए, खैर और भलाई की बात, और इससे बड़ी खैर और भलाई की क्या बात हो सकती है कि लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाए और जहन्नुम से बचने का रास्ता बताए, तरीका बताए। तो जैसे उसके लिए सारी मखलूक रहमत की दुआ करती है, सारी मखलूक उसके लिए इस्तिग़फ़ार मांगती है, दुआएं करती हैं, मछलियां दुआएं कर रही हैं, सोचे, चींटियां दुआएं कर रही हैं अपने बिलों में, फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं, और इतनी मखलूक है अल्लाह ताला की सारी दुआएं कर रही है। कितनी खुशकिस्मती है उसके लिए जो खैर की बात लोगों तक पहुंचाता है। तो ऑपोजिट जो करता है, जो छुपा लेता है, उसके लिए सारी मखलूक फिर लानत करती है। और लानत क्या चीज है? अल्लाह ताला की रहमत से दूरी को कहते हैं लानत, कि अल्लाह की रहमत उस पे ना हो, और अल्लाह की रहमत जिस पे ना हो वो जन्नत में तो जा ही नहीं सकता, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से ही जन्नत में जा सकता है, अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं जा सकता, तो वो जन्नत से तो महरूम हो ही गया। इंसान को क्या अल्लाह ताला की रहमत सिर्फ वहां चाहिए? दुनिया में भी चाहिए, कब्र में भी चाहिए, हशर में भी चाहिए, हर हर जगह पे चाहिए, और आखिरी पॉइंट पे जन्नत में जाने के लिए भी चाहिए। इंसान तो हर वक्त अल्लाह की रहमत का मोहताज है। तो ये लोग जो ये काम करते हैं उनके लिए इतनी बड़ी वईद है। अब इसमें एक इमाम कुर्तुबी ने एक्सेप्शन भी रखी है कि हाँ, हर मसला छुपा लेना कितमान नहीं होता, यकतुमून है ना, कितमाने इल्म, हर मसला छुपा लेना नहीं होता। बाज दफा ऐसा कोई ऐसी कोई बात होती है कि अगर वो लोगों को बता दी जाए तो लोगों में फितना पैदा हो सकता है, गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, और ऐसे कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, हजरत इब्ने अब्बास के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि क्या अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसकी तौबा कबूल हो जाती है? तो फरमाया नहीं। अच्छा, वो चला गया। दूसरा आया, उसने कहा कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो क्या उसकी तौबा कबूल हो जाएगी? फरमाया कि हाँ। लोगों ने कहा कि आपने उसको ये कहा है, उसको ये कहा है, तो हमने तो इल्म छुपा लिया, क्योंकि तो तौबा तो हर एक की कबूल हो जाती, अल्लाह ताला से तौबा करे अल्लाह ताला माफ कर देता है। फरमाया कि जो पहला आदमी आया था वो एक शरपसंद आदमी था, और ऐसा लग रहा था मुझे कि ये किसी को कत्ल करने का इरादा रखता है, अगर मैं कह देता हाँ को तौबा कबूल हो जाती है तो उसने जाके कत्ल कर देना था। और दूसरा जो आदमी आया था उस ये काम कर चुका था, अगर मैं उसको ये कहता कि नहीं कबूल होती, वो तो खैर बात ही नहीं थी सही, लेकिन मैंने उसको इसलिए कहा कि वो तौबा कर ले। कभी हिकमत के तहत ऐसे मसला बयान करना चाहिए। इसी तरह जैसे आपको पता है कि हज्जाज बहुत जालिम था ना, उसने आके पूछा था किसी से कि मुझे मसला बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ी सजा किसी को दी हो वो क्या दी थी। वो एक्चुअली ये चाहता था कि मैं जस्टिफाई करूं जो मैं सजाएं देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो ये दी थी ना। तो जब उसको बताया गया कि इस तरह आपने वो चरवाहों को ऐसी सजा दी थी, उनका भी वही हाशर किया था जो उन्होंने किया था, तो वो बड़ा मुतमईन हो गया। तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं काश इन्होंने ये मसला इसको ना बयान किया होता, क्योंकि ये अब इस खुली छुट्टी पा गया और इसने जाके अब वही करना। ठीक है, तो इसमें मसलहत भी चाहिए होती है। बाज दफा बाज लोग ऐसे करते हैं, उन लोगों को जिसमें रायत दे सकते हैं उसमें भी नहीं रायत देते, नहीं, ये तो ऐसा है ही नहीं, वो क्योंकि उनको इल्म पूरा नहीं होता, उनको जितना इल्म होता है वो उतने के मुताबिक बता रहे होते, हालांकि उसमें रायत मौजूद होती है, उसमें रुख्सत मौजूद होती है, दूसरा भी काम कर लें, दोनों काम जायज होते, तो तब वो भी कर सकते हैं, और लोगों में ज्यादा वो आम होता है तो उनको कहेंगे नहीं आप ये तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं होता। इससे भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसीलिए जिसने कोई दो चार लेक्चर सुन के या दो चार किताबें पढ़ के और पढ़ाने बैठ जाए कोई, उससे इल्म ना लें, इल्म के ऐसे मसले ना पूछे, पता नहीं है कि वो एक चीज जानता होगा, वो इन टोटैलिटी नहीं जानता होगा, डेप्थ नहीं जानता होगा। अब उसने कोई चीज सुन ली, अब वो उसी को लेके चल पड़ा, कोई सुन्नत उसने कभी सुनी ही नहीं थी, कहेगा मैं ये तो है ही नहीं है, ऐसे लोगों को उससे बाज करना शुरू कर देगा। तो दीन का इल्म डिलीवर करना कोई मामूली बात नहीं होती, इसके अंदर पुख्तगी होनी चाहिए, क्योंकि वरना लोग किसी फितने में पड़ सकते। लेकिन ये कि जिस चीज का आपको पता है, मसलन आम चीजें, कोई आपसे पूछे कि मुझे सूरह फातिहा आप सिखा दें, आप कहते नहीं मैं तो नहीं सिखाती इसको, इसको भी फिर आ जाएगी। एक वैसे एग्जाम्पल दे रही, इसको भी फिर आ जाएगी। अच्छा फिर इसको भी ये पढ़ना आ जाएगा, ये करना आ जाएगा, तो मैंने तो नहीं सिखाना, तो उसको कोई बहाना करके भेज देते। तो ये नहीं सही। या कोई आपसे पूछता है कि ये चीज सही है या नहीं सही, और आपको अच्छी तरह मालूम है, उसको मत छुपाएं कभी। आप मसलन क्लास से कोई बात सुन के गए हैं, अब किसी ने वही बात पूछ ली, या आपके सामने वही चीज कर रहा था, आपने नहीं गवारा किया कि मैं इसको बता दूं कि नहीं ये इस तरह कुरान करीम में आया है और मैंने इतना सुना है, जितना आपके पास इल्म है सिर्फ उतना सा दे दे। आपको कोई ये नहीं कि कोई फतवे देने बैठ जाएंगे, लेकिन उतनी बात तो बता दे, मैंने ये बात इस तरह पढ़ी है, छुपाए नहीं, क्योंकि छुपाना बहुत सख्त गुनाह है। अब हम देखें ना, जो बातें अक्सर ऐसी होती हैं जिससे हमारी वाह वाह हो सकती है, जैसे कोई लेटेस्ट कोई चीज की बात, ऐसे कोई फैशन की बात है, या इसके उसके ऊपर हम खूब बताते हैं, इसलिए कि हम लोगों को चाहते हैं कि उनमें हमारी धाक बैठे, देखो इसको कितना पता है इस चीज का। लेकिन जहां पे दीन की बात होती है, हमें बाज दफा ये होता है कि लोग कहेंगे ये बड़ी मुलानी है, ये बड़ी ये है, तो इसलिए रहने दो, मैंने नहीं बतानी। तो छुपाए नहीं कभी। यहां से एक और बात भी हमें समझनी चाहिए, जो हजरत अली ने फरमाया कि आम लोगों के सामने सिर्फ उतने ही इल्म का इजहार करो जिसकी उनको अकल और फहम बर्दाश्त कर सकती है उतना। क्या तुम ये चाहते हो कि लोग अल्लाह और उसके रसूल की तकजीब करते? क्योंकि बाज दफा आप ऐसे लोगों के सामने जो नहीं इतना समझ रखते, उनके सामने वो मसले बयान करने शुरू हो जाते हैं जो इतनी डेप्थ के हैं। अब उनको जब समझ नहीं आती ना, वो आगे से कोई बात मुंह से निकाल देते हैं जो गलत बात है। वो उसने क्यों निकाली? आपके इस तरह का मसला बयान करने की वजह से। तो इसलिए इल्म सिखाने में ना बहुत हिकमत चाहिए होती है। आज लोग ऐसे ही बस किताब लेके बैठ जाते हैं, उसमें से पढ़ पढ़ के ये बता रहे ये बता रहे हैं। अब जैसे मैं बहुत मैंने पढ़ लिया और मैं, लेकिन उनका इल्म पुख्ता नहीं होता, इसी वजह से वो मिसगाइड कर लेते हैं लोगों को। तो उतना ही बताएं जिसकी आपको श्योरिटी हो, और कभी फतवे ना दें। जैसे और ये भी देखना जरूरी है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी इल्मी सतह भी उतनी है या नहीं। अब अकीदे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो क्यों नहीं इस तरह से मैं क्लास में बयान करती? इस वजह से नहीं करती, हर कोई उसको नहीं समझ सकेगा, और ये ना हो कि उनके अपने दिल में कोई शक व शुभात आ जाए। बहुत सारी बातें वो सिर्फ एक लेवल पे जाके आप समझ सकते हैं, उस लेवल पे ही समझा जा सकती हैं, और तभी वो आपके लिए सही भी हैं। जैसे आप एक बच्चे को एक बादाम दे दें, वो उसे चोक कर जाएगा, वो हेल्दी चीज है, लेकिन वो नहीं खा सकता। तो जो जितना उसकी फहम है, जितनी उसकी समझ है, जितना उसका इल्म है, उसके मुताबिक बात बयान की जाए। ये बहुत बड़ा रूल है जो आपको समझना है। हाँ, मगर जो चीज आपको आती है, आपको नमाज पढ़नी आती है, आपको कलमा आता है, आपको दुरूद शरीफ आता है, आपको उसके फजाइल का पता है, आपको ये, आप जरूर बताएं, वो जाएं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला की लानत और लानत करने वालों की लानत है ऐसे शख्स के लिए। बहुत सीरियस बात है ये, कितनों की लानत पड़ गई इसके ऊपर। तो अवलीन तो वो उलमाए यहूद है, लेकिन उनके बाद जो भी छुपाएगा, कुरान की भी जिम्मेदारी है इस जिम्मेदारी को भी आसान तरीके से निभाने की जरूरत है। इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू, फिर कहा गया सिवाय उनके जो तौबा कर ले। कि अब हम नहीं छुपाएंगे, वह असला और इसलाह कर ले, यानी अब बताना शुरू कर ले, खुद को करेक्ट कर ले, वह बयान और बयान करे, यानी इसलाह में ये भी आ गया कि सिर्फ सुबानी तौबा नहीं की बल्कि अपने आप को चेंज किया और अब बयान करना शुरू कर दें, फाउलाए का तुबू वाली, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर मेहरबान होगा, अल्लाह ताला फिर से उनके ऊपर अपनी रहमतें निछावर करेगा, उनसे लानत खत्म कर देगा। वह अनत तवाबुर रहीम, और मैं बार बार तौबा कबूल करने वाला हूँ, बार बार इंसान पलटता है अल्लाह ताला की तरफ, उससे गलती हो जाती है, अल्लाह ताला बार बार माफ करता है और उसके बाद रहम भी फरमाता है। तो वो उम्मते वसत की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि इस दीन के पैगाम को आगे पहुंचाया जाए, और अगर हर एक अपनी इस जिम्मेदारी को गिव अप करना शुरू कर दे और कहे ये तो बस उनका काम है जो मौलवी बैठे हुए हैं मस्जिदों के अंदर, वो ही करें तो करें, हम क्यों करें, हम क्यों पहुंचाएं कुछ बात, तो फिर कौन ये काम करेगा। इससे पता चलता है सीख सीख के भी इंसान बस बैठा रहे, मैंने अब किसी को नहीं बताना, क्योंकि बाज दफा इंसानों को ये होता है जैसे अपने खानों की रेसिपी किसी को ना बताऊं, क्योंकि अगर किसी और को पता चल गया ना तो वो भी बनाना शुरू कर दे, इसी तरह दीन के इल्म को ऐसे लेकर बैठ जाए कि मुझे इतना पता है, ये सारे बस मेरे पास आके पूछा करें, अगर मैं इनको बता दूंगी तो ये इनको भी सारा कुछ पता चल जाएगा, मैं क्यों उनको सिखाऊं। कोई हज के अहकामात हैं, कोई जकात के हैं, कोई नमाज कैसे पढ़नी है, कोई इनको भी सिखाने में लोग बुखल करते हैं, लोग बस किसी को कुछ ना आए, क्योंकि जब तक किसी को नहीं आएगा जाहिर है वो बार बार मेरे पास आएगा पूछने, और इनको आ गया तो फिर मेरी क्या जरूरत रह जाएगी। तो यहाँ पे एक और बात, अतूब आले ही, मैं ना आला आ गया ना, तो अब यहां से पता चल गया कि अल्लाह ताला का बंदे की तौबा कबूल करना है, बंदे का तौबा करना वो होता जब इला होता, तो फिर होता कि बंदा अल्लाह ताला के आगे तौबा कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो अपना एक्शन बदल लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, अल्लाह ताला माफ कर देता है। इसमें तौबा की तरगीब दी जा रही है कि तौबा कर लो और पलट आओ, और इस चीज को छोड़ दो कि जो तुम छुपाते हो। जब बंदा पलट आता है तो अल्लाह ताला कितना बड़ा मेहरबान है, इंसान के पास कोई पलट के आए तो 10 उसको सुनाता है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी फरमाता है कि वो अत्तवाब है और अर्रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला फिर उनको चांस देता है। और देखें ये तौबा का दरवाजा खुला रखना हमारे लिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है। ऐसे लगता है कि शायद जो पिछली शरीयतें थीं उनमें तौबा का दरवाज़ा उस तरह नहीं खुला होता था जिस तरह हमारे लिए, क्योंकि एक हदीस से हमें यह पता चलता है कि जब कुफारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया था कि सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि चलो ये इस तरह ही मान लिया है, तब जिब्राईल अलैहि सलाम आए और उन्होंने आके फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, अगर आप चाहें तो मैं इनके लिए सफा पहाड़ी सोने की बना देता हूं, मगर इसके बाद अगर इनमें से कोई काफिर हुआ तो मैं इनको वो अजाब दूंगा जो इससे पहले कभी जहान वालों में किसी को भी नहीं दिया, और अगर आप इस ऑप्शन को छोड़ दें और दूसरा ऑप्शन ले लें तो अल्लाह ताला आपको वो दे सकता है कि अगर आप चाहें तो सफा पहाड़ तो नहीं सोने का बनाया जाएगा, लेकिन आपकी उम्मत के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा जाएगा, ये हमेशा खुला रहे आपकी उम्मत के लिए तौबा का दरवाजा, यानी जब तक ये जान नखरे में ना आ जाए तब तक खुला रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया अल्लाह ताला मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरी उम्मत के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखना। तो अल्लाह ताला ने अपनी इस रहमत का दरवाजा खुला रखा, तो पलटने में देर नहीं लगानी, इंसान जल्दी पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की वादी को गिव अप कर दिया और अपनी उम्मत के लिए कयामत तक के लिए इस दरवाजे को खुलवा दिया, और अल्लाह ताला कितना खुश होता है इंसान जब तौबा करता है तो कितना खुश होता है, इतना खुश होता है जितना कि हदीस में आया कि एक बंदा सहरा में है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ना पानी ना खाना ना कुछ नहीं, और ऐसे में उसका ऊंट गुम हो जाता है। वो लेटा उठा तो देखा ऊंट ही गायब है। अब वो ऊंट ही था जिसपे उसको खाने का सामान था, ऊंट ही था जो उसकी सवारी था। अब लको दक सहरा है, ना यहां से कभी निकल सकता है, ना डायरेक्शन का पता है, ना कुछ है, कभी जा ही नहीं सकता यहां से, ना उसका मतलब है कि डेथ। तो वो लेट गया, उसने कहा अब तो मरना ही है, अब क्या, मैंने मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं। इतने में उसने देखा उसका ऊंट उसके सामने खड़ा था, वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसके मुंह से निकला कहना ये था, ए अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा। उसने कह दिया, ए अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। अल्लाह ताला ने फरमाया जितनी इस बंदे को खुशी हुई है ना अपने ऊंट को देख के, उसके मुंह से भी उलट पुलट ही निकल गया, उससे ज्यादा अल्लाह ताला को खुशी होती है अपने बंदे की तौबा से। आज अगर आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, हमें खुशी तो वैसे हमें ही होनी चाहिए हमारी तौबा कबूल हो जाए तो, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हो तो तौबा, तौबा का मतलब क्या होता है, पलट आना। तौबा की पहली शर्त यह है कि इंसान उस गुनाह को छोड़ दे, उस गुनाह को छोड़ दीजिए जिसके लिए आप तौबा कर रहे हैं। नंबर टू, उसके ऊपर शर्मिंदा हो और दिल में बुरा समझें कि हाय मैंने क्यों ये किया, ये नहीं कि उसका शौक मेरे दिल में इतना है, हाय छोड़ना पड़ रहा है, चलो एक दफा आखिरी दफा कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद तो फिर मैंने तौबा करनी ही है ना, तो एक दफा ही करूंगी, लेकिन अब मैं नहीं। उसके दिल में रिमोर्स हो, उसके दिल में इतना रिग्रेट हो कि क्या हो गया मुझसे, मैंने अपने इस उस रब को जो इतना मेहरबान है उसको नाराज कर दिए, ये रिग्रेट होना जरूरी। और ये वादा, तीसरी शर्त ये है कि ये वादा करे मैंने दोबारा नहीं करना। आज जब आप शाम में बैठे हो और आपको कोई ख्याल आ जाए कि मैं चलो अल्लाह ताला को खुश कर दूं, तो तौबा कर लें। इंसान की इस्तिग़फ़ार करने से, उसके तौबा करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़ारुन, और वो लोग जो नहीं मानते, एक तो काफिर आम काफिर है ना, कि जो जो भी कुफर करेगा और मरेगा कुफर पे ही मर गया इस हाल में कि वो काफिर था। उलाय कालेम लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नासी अजमाईन, ये ऐसे लोग हैं जिन पे अल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत और लोगों की लानत, और इसी लानत में ही वो खालिदीन फिया, इसमें ही रहेंगे हमेशा। ला युखफ्फफु अनहुम अल अज़ाब, उनसे अब अज़ाब भी नहीं दूर होगा, वला हुम युनज़रून, ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। तो एक तो आम काफरों के लिए, जो काफिर मर गया कुफर के ऊपर उसके लिए है। तो उलमा इससे कहते हैं कि लानत वैसे स्पेसिफिकली आप किसी के ऊपर ना भेजें कि फलां वो इसके ऊपर ही मरा है और उसके ऊपर लानत है, हमें क्या पता, हो सकता है उसने उस वक्त कलमा पढ़ लिया हो, हम तो उसके पास भी नहीं थे। ठीक है, वैसे अमूमी तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे यहां पे एक जनरल बात है ना कि जो भी कुफर पे मरेगा या जो ये काम करते हुए मरेगा, शिर्क करते हुए, बुतों की पूजा करते हुए, फलां जी जो भी, तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, लेकिन किसी का नाम लेके ये ना कहें, और किसी जिंदा का नाम लेके बिल्कुल ही ना कहें, इसलिए कि क्या पता कल को वो ईमान ले आए, क्योंकि लानत भेजना बड़ा ही रिस्की काम है, बड़ा खतरनाक काम है। ये हमें पता नहीं है, मैं जैसे अभी आपको बताया था कि औरतें जहन्नुम में ज्यादा इसलिए जाएंगी, लानतें बहुत भेजती हैं। ये जो बच्चे आजकल कहते हैं डैम डैम, ये क्या है, ये भी तो लानत ही है। तो छोटी छोटी बात पे ऐसे कहते हैं उसके ऊपर लानत, तो वो लानती है, तो लानती क्या होता है, अब होगा क्या, किस तरह ये रिस्की है, किस तरह ये खतरनाक चीज है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी शख्स या चीज पे लानत करता है, अब चीज पे भी तो लोग लानत करते हैं, लानत है ऐसी चीज, ऐसी गाड़ी के ऊपर जो चल नहीं रही, लानत है ऐसे घर पे, मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे पैसों पे, ये कैसी बातें हैं, हर चीज के ऊपर ही लानत भेजने, चीजों पे भी ना। एक दफा एक औरत ने ना लानत भेज दी थी अपनी ऊंटनी पे, अपनी सवारी पे, आप सर सर ने फरमाया बस अब इसको आजाद कर दो, अब नहीं आप इसके ऊपर बैठ सकती, इसलिए जिस चीज पे आपने लानत कर दी है ना, अब आप इसके ऊपर ना बैठो, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत से दूर हो गई, आपने इसके ऊपर लानत भेज दी है। तो फरमाया जो किसी शख्स या चीज पर लानत करता है वो लानत आसमान की तरफ चढ़ती है, ये छोटी बात है कोई, आसमान की तरफ चढ़ती है, तो आसमान के तो दरवाजे बंद होते हैं उसके लिए, तो अब वो ऊपर आगे जा नहीं सकती। तो फरिश्ते अल्लाह ताला को बताते हैं कि ये लानत है, ये यहाँ पे फिर रही है, वो वहीं पे फिरती जाती है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला बावजूद इसके कि अल्लाह ताला को तो इल्म है, लेकिन अल्लाह ताला उनसे सवाल करता है कि किस चीज, किसने किसके ऊपर लानत की है, तो वो बताते हैं कि उसने फलां ने फलां चीज पे या शख्स पे लानत की है। तो अल्लाह ताला पूछता है जिस चीज या शख्स पे उसने लानत की थी वो उसका हकदार भी था कि नहीं? अगर तो वो हकदार है तो फिर उसके ऊपर वो लानत डाल दी जाती है, अगर वो उसको मुस्तहिक है, अगर वो उसको डिजर्व करता है। और अगर वो उसका हकदार नहीं है, डिजर्व नहीं करता है, तो तब वो लानत उसी के ऊपर कहा जाता है, अल्लाह ताला फरमाता उस पे ही डाल दो जिसने ये लानत भेजी थी। तो जो लोग सारा वक्त ये करते जाते हैं, इस पे लानत तो उस पे लानत, तो उस पे ऐसा तो उस पे डैम तो उस पे ऐसे, बताएं सारा दिन वो अपने ऊपर ही लानते दे रहे होते, क्योंकि अभी चीजों का तो कोई कसूर नहीं। आपने एक दुआ मांग रही कि अल्लाह ताला इसको अपनी रहमत से दूर कर दे, या कि इस शख्स को दूर कर दे, वो लानत ऊपर ही आ गई, फिटकार ऊपर ही पड़ गई। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह की फिटकार हो इसके ऊपर, ये भी लानत के ही लफाज है। अल्लाह अकबर। तो लानत उसके लिए है जो मर जाए इस हाल में कि वो काफिर है, यहाँ पे भी स्पेसिफिक नहीं है, ये एक रूल है। इसलिए जो काफिर है और कुफर पे मर जाएगा वो कभी अजाब से नहीं निकलेगा, और ना ही उसको मोहलत दी जाएगी को कोई ब्रेक ही मिल जाए उसको अजाब से, उसमें खालिदीना फीहा, उसमें हमेशा ही रहेगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि हाय कुफर किया तो क्या हो गया, वैसे तो बहुत नाइस है, तो ये कुरान बताता है कि अगर मौत आ गई ना उसके ऊपर तो फिर कोई रास्ता नहीं है उसका बचने का, तो फिर अल्लाह की रहमत से दूर ही दूर है। और जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया फिर सोच लें उसका अंजाम क्या होगा। और अगर पिछले कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कफरों का मतलब क्या है, वो लोग जो छुपाते हैं, छुपाते क्या चीज छुपा रहे थे, जो अल्लाह ताला ने निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई थी उनको छुपाते थे, और इसी में मर गए, उन्होंने अपना एक्शन दुरुस्त नहीं किया, उनके लिए ये सजा है। अल्लाह ताला हमें इन आयात से अपने लिए अमल की जो पॉइंट्स हमने लिए उनके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें लानत भेजने वाला ना बनाए कि हम किसी के ऊपर भी लानत भेजें, और अल्लाह ताला हमें उम्मत वसत की जो जिम्मेदारी है इसको पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे ये काम ले ले, और जब आजमाइश आए तो हमें उसमें साबित कदम रखे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमें हर किस्म की ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे, जो बेसब्री और जो हमारे ईमान के में कमी का बाइस बने। आज बहुत इम्पोर्टेंट ये आयत जो हमने पढ़ी है, इसके ऊपर 155 से 157 तक इसके ऊपर ज़रूर गौर करिएगा, और सोचिएगा कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ये मेरे ऊपर, या कोई आ जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर मैं मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए और मुझे किस तरह से सब्र करना है। और जो छोटी चीजों पे सब्र नहीं कर सकते वो बड़ी पे भी नहीं कर सकते। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون